एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम जापानी साहित्य की एक बहुत ही खास और प्रभावशाली रचना पर बात करने वाले हैं।
हाँ, यासुनारी कावाबाता का उपन्यास स्नो कंट्री
यानी हिमदेश, और मूल जापानी में नाम है युकीगुनी।
बिल्कुल, कावाबाता मतलब जापान के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्य में 1968 में।
हाँ, और उनकी लिखने की शैली वो बड़ी अनोखी है। उसमें एक जैसे कविता जैसी लय है, इशारों में बात कहने का अंदाज
और कम शब्दों में बहुत कुछ महसूस करा देने की ताकत। बिल्कुल,
उनके काम में अक्सर वो खास जापानी एहसास झलकता है जिसे मोनोनो आवारे कहते हैं।
हाँ, मोनोनो आवारे मतलब चीजों के पल पल बदलने, उनके मिट जाने का एक मीठा सा दर्द, एक उदासी।
हाँ, वही। और स्नो कंट्री ये कोई एक बार में लिखा उपन्यास नहीं है।
नहीं, ये तो 1935 से 1947 के बीच किश्तों में छपता रहा,
और फिर 1948 में एक पूरी किताब की शक्ल में आया।
हाँ,
से कावाबाता की सबसे बेहतरीन रचना माना जाता है ना?
बिल्कुल, नोबेल कमेटी ने भी इसका जिक्र खास तौर पे किया था।
तो आज हम इसी हिमदेश की बर्फीली वादियों में उतरेंगे, किरदारों के दिल की गहराइयों को टटोलने की कोशिश करेंगे।
हाँ, और प्यार, अकेलेपन, खूबसूरती और हर चीज के गुजर जाने जैसे एहसासों पर बात करेंगे।
और इस हिमदेश में एंट्री भी कितनी यादगार है, उपन्यास की शुरुआती पंक्तियां।
अरे हाँ, वो तो मतलब जापानी साहित्य में अमर हो चुकी हैं। लंबी सुरंग से निकलकर ट्रेन हिमदेश में पहुंची। रात के आकाश तले धरती सफेद चादर ओढ़े थी।
ये सिर्फ नजारे का बयान नहीं है, क्यों?
बिल्कुल नहीं, ये पंक्तियां जैसे जैसे एक दरवाजा खोलती हैं रोजमर्रा की दुनिया से एक बिल्कुल अलग सपनों जैसी जगह में,
जहां बर्फ की चादर तले एक अजीब सी खामोशी है, एक तेज चुभने वाली खूबसूरती,
और जहां इंसानी जज्बात शायद ज्यादा खुलकर सामने आते हैं, एक अलगाव और बदलाव का एहसास।
बिल्कुल, और इस बर्फीले सफर पर निकला है शिमामुरा, कहानी का मुख्य किरदार।
टोक्यो का रहने वाला अमीर आदमी जिसके पास वक्त ही वक्त है, और शायद इसीलिए जिंदगी में कोई खास मकसद नहीं।
उसकी पहचान है उसकी भावनात्मक दूरी, एक तरह का ठंडापन।
हाँ, वो चीजों को महसूस करने के बजाय उनके बारे में सोचता ज्यादा है।
और उसका वो शौक बड़ा अजीब है, पश्चिमी बैले डांस का जानकार है लेकिन
कभी कोई बैले देखा ही नहीं।
हाँ, सिर्फ किताबों में पढ़कर और कल्पना करके एक्सपर्ट बन गया।
मतलब ये शौक ही उसके जीने के ढंग का आईना है ना? असलियत से ज्यादा ख्याली रूप पसंद है उसे।
बिल्कुल, तो उसका हिमदेश आना भी कोई गहरी तलाश नहीं है, बस शहर से भागना है, एक धुंधली सी उत्सुकता,
थोड़ी देर के लिए सुकून की तलाश शायद।
हाँ, और शिमामुरा की इस ठंडी ख्याली दुनिया के बिल्कुल उलट हमें मिलती है कुमाको।
कुमाको?
हाँ,
उसी पहाड़ी इलाके के एक गर्म पानी के चश्मे वाले कस्बे मतलब ऑनसेन की एक जवान गेशा।
गेशा यानी वो पारंपरिक जापानी कलाकार।
हाँ, जो अपनी कला और बातचीत से मेहमानों का मनोरंजन करती हैं।
शिमामुरा जहाँ भावनाओं से दूर भागता है, कुमाको वो तो जज्बात से भरी हुई है, उसमें एक आग है।
लेकिन उसकी कहानी सीधी नहीं है, वो अपनी मर्जी से
नहीं, घर की जरूरतें, जिम्मेदारियां, वो उसे इस काम में ले आई, खासतौर पर वो युकियो,
अपने संगीत गुरु का बीमार बेटा।
हाँ, उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, पर वो सिर्फ हालात की मारी नहीं है, उसमें समझ है, हुनर है।
शामिसिन बजाती है, डायरी लिखती है।
हाँ, जिसमें उसके दिल का हाल छिपा है, शिमामुरा से उसका रिश्ता, वो उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच झूलता रहता है।
वो शायद सच्चा प्यार ढूंढती है पर
कहीं ना कहीं अपनी किस्मत को भी जानती है। उसका ये जुनून और उसकी बेबसी, ओह, दिल को छू जाती है। हाँ, कुमाको का किरदार बहुत बहुत हिला देता है। और फिर एक और अहम किरदार है कहानी में, योको।
योको?
हाँ,
एक रहस्यमयी सी लड़की जिसके होने में भी कुछ अजीब सा जादू है।
शिमामुरा से पहली बार ट्रेन की खिड़की के शीशे में देखता है, रात के अंधेरे और बर्फ के नज़ारे पर जिसे उसकी एक तस्वीर उभर आई हो।
हाँ, वो पहली झलक ही उसके किरदार को एक पर्दा नशीन राज बना देती है।
योको की आवाज़ बहुत साफ और असरदार है, और उसके पूरे वजूद से एक पाकीज़गी, एक पवित्रता सी झलकती है।
और उसका युकियो से, वही बीमार लड़का, बहुत गहरा लगाव था। जैसे माँ का होता है।
कहानी में योको जैसे एक प्रतीक बन जाती है उस आदर्श खूबसूरती का जिसे पाया नहीं जा सकता।
बिल्कुल दुनियावी नहीं लगती। कुमाको की जीती जागती थोड़ी उलझी हुई खून पसीने वाली असलियत से बिल्कुल अलग।
क्यों?
बिल्कुल
सही। योको जैसे ख्वाब और कुमाको हकीकत, और ये दोनों शिमामुरा के लिए क्या मायने रखती हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प सवाल है।
अच्छा तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? आपने कहा कोई सीधा साधा प्लॉट नहीं है।
नहीं, कहानी असल में शिमामुरा की उस बर्फीले कस्बे की तीन यात्राओं के आसपास घूमती है।
टुकड़ों टुकड़ों में?
हाँ।
जैसे कोई पुरानी यादें हों।
हाँ, जो वक्त बीतने और उम्मीदों के धुंधलाने का एहसास कराती हैं। पहली यात्रा जिसका जिक्र बाद में आता है वो बसंत के आखिर में हुई थी।
तब शिमामुरा कुमाको से पहली बार मिला था जब वो पूरी तरह गेशा नहीं बनी थी,
और शिमामुरा को उसकी सादगी या कहें सफाई अच्छी लगी थी। उसने यूं ही कह दिया कि वो फिर आएगा,
और कुमाको ने इस बात को दिल से लगा लिया।
बिल्कुल। दूसरी यात्रा जो उपन्यास का बड़ा हिस्सा है वो कड़ाके की सर्दियों में होती है।
हाँ, इसी सफर की शुरुआत में वो ट्रेन वाली खिड़की में योको का अक्स देखता है।
इस बार वो आकर देखता है कि कुमाको अब पूरी तरह गेशा बन चुकी है। उनका रिश्ता इस दौरान गहराता है। कुमाको का प्यार अब जुनून, बेताबी की हद तक।
जबकि शिमामुरा वो अब भी एक बाहर वाले की तरह ही उसे देख रहा है, दिलचस्पी से पर दूरी बनाए हुए।
और इसी बीच युकियो की मौत हो जाती है।
हाँ, और शिमामुरा योको के गहरे लगभग डरावने मातम को देखता है।
शिमामुरा फिर जाने का वादा करके चला जाता है, जो इस बार और भी ज्यादा बेमानी लगता है।
ये वादे शिमामुरा के लिए शायद बस कहने की बातें हैं, पर कुमाको के लिए?
कुमाको के लिए जिंदगी की उम्मीद। और तीसरी यात्रा?
तीसरी और आखिरी यात्रा पतझड़ में होती है। बर्फ अभी गिरी नहीं है, पर हवा में सर्दी का एहसास है, जो उनके रिश्ते की हालत को भी दिखाता है।
इस बार माहौल में तनाव बहुत बढ़ गया है।
हाँ, कुमाको ज्यादा शराब पीने लगी है, उसकी नाउम्मीदी साफ दिखती है। शिमामुरा के लिए भी अब इस रिश्ते में मतलब कोई कशिश नहीं बची, बोझ लगने लगा है।
वो जानता है कि ये उसका यहाँ आखिरी बार आना है।
कहानी एक अनकहे अंत की तरफ बढ़ रही है, और फिर आता है कहानी का चरम बिंदु, एक हादसा।
जो सिर्फ हादसा नहीं एक प्रतीक भी है। गाँव के गोदाम में, जिसे लोग कभी कभी सिनेमा हॉल की तरह इस्तेमाल करते थे।
हाँ,
आग लग जाती है।
भीड़ लगी है, शोर है, और शिमामुरा भी वहीं है हमेशा की तरह, थोड़ा अलग, थोड़ा दूर खड़ा।
तभी वो देखता है कि जलते हुए गोदाम की बालकनी से कोई नीचे गिरता है।
वो योको है, एक टूटी हुई गुड़िया की तरह बेजान सी।
उफ। और उसी पल भीड़ में से कुमाको।
कुमाको चीखती हुई आगे बढ़ती है, उसका चेहरा दर्द, डर और एक अजीब से पागलपन वाले प्यार से बदल जाता है। वो योको के बेजान शरीर को अपनी गोद में उठा लेती है और चिल्लाती है, ये बच्ची पागल है, ये पागल है।
ये कुमाको का सबसे बिखरावा, सबसे असली पल है, जहां उसका सारा दर्द, सारा प्यार, सारी हताशा एक साथ फट पड़ती है।
ये मंजर सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसे में शिमामुरा क्या करता है? यही उसके किरदार का असली रंग सामने आता है ना।
बिल्कुल। इस भयानक इंसानी त्रासदी के बीच, जहां कुमाको दर्द से बिलख रही है, योको शायद मौत के मुंह में है, शिमामुरा नीचे नहीं देखता।
उसकी नजरें ऊपर उठ जाती हैं, रात के काले आसमान की तरफ।
वो आकाशगंगा, मिल्की वे को देखता है, तारों की उस विशाल ठंडी नदी को, और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो नदी उसके अंदर बह रही हो।
मतलब उसे इंसानी दुख दर्द के बजाय आसमान की वो विराट, खामोश, सर्द खूबसूरती ज्यादा छू जाती है।
ये पल दिखाता है कि शिमामुरा हकीकत से कितना कितना कट चुका है। वो इंसानी जज्बात से इतना दूर हो गया है
कि मौत और मातम भी उसके लिए बस एक दूर का नजारा, एक तरह का ठंडा सौंदर्य बोध बनकर रह जाते हैं।
उपन्यास का अंत भी इसी ठंडेपन के एहसास के साथ होता है, जब शिमामुरा उस हिमदेश को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला करता है, कुमाको को उसके हाल पर छोड़कर।
तो कहानी तो बहुत दर्दनाक है, लेकिन इसमें गहरे सवाल छिपे हैं। अगर हम इसके मुख्य विषयों या संदेशों की बात करें, तो सबसे पहले शायद व्यर्थ गई खूबसूरती या बेकार कोशिश का ख्याल आता है।
हाँ, खासकर कुमाको के जरिए उसका गहरा प्यार, संगीत का हुनर, जीने की उसकी लगन, सब कुछ शिमामुरा जैसे एक ऐसे आदमी पर जाया होता है जो उसे मतलब अपना नहीं सकता, समझ नहीं सकता।
ये उस इलाके में बनने वाले खास कपड़े चिंजमी की तरह है। सुना है ये बड़ा खूबसूरत कपड़ा होता है, जिसे सर्दियों में बर्फ पर बिछाकर बड़ी मेहनत से बनाते हैं,
पर पहना गर्मियों में जाता है और जल्दी ही खराब हो जाता है।
हाँ, खूबसूरत, मेहनत से बना, पर टिकने वाला नहीं। बिल्कुल कुमाको के प्यार और शायद उसकी जिंदगी की तरह।
सही कहा। और दूसरा बड़ा मुद्दा है आज के इंसान का अकेलापन, उसका अपनी जड़ों से कटना। शिमामुरा इसी अकेलेपन का प्रतीक है।
वो शहर की दौड़भाग वाली जिंदगी का हिस्सा है जो परंपराओं से, अपने समाज से और यहाँ तक कि सच्ची गहरी भावनाओं से भी दूर हो गया है।
वो दूसरों की जिंदगियों में एक मेहमान या कहें कि एक तमाशबीन की तरह आता है।
देखता है, महसूस करता है या करने का दिखावा करता है, पर जुड़ता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता।
वो सुंदरता को भी बस दूर से सराहता है, उसका हिस्सा नहीं बनता।
और प्यार, प्यार और रिश्तों का क्या रूप दिखाया कवाबता ने?
ये शायद एक तरफा प्यार की सबसे दर्द भरी कहानियों में से एक है। शिमामुरा के लिए कुमाको का जुनून वो एक दिलचस्प चीज है जिसे वो देखता है, समझता है, शायद सराहता भी है, पर बस एक बाहरी नजरिए से।
जबकि कुमाको के लिए वो उसकी पूरी दुनिया है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच।
सवाल छोड़ जाता है कि क्या दो इतने अलग लोग, जिनके हालात, जिनकी सोच, जिनकी जरूरतें इतनी जुदा हों, कभी सच में एक दूसरे को समझ सकते हैं?
या हम सब अपनी अपनी भावनाओं और नजरियों के कैदी हैं?
और वो पाकीजगी बनाम असलियत वाली बात भी तो है। एक तरफ बर्फ से ढकी दुनिया, सफेद, शांत, साफ सुथरी लगती हुई,
पर उस बर्फ के नीचे इंसानी जिंदगी है, उलझी हुई, जरूरतों और मजबूरियों से भरी, जज्बाती, कई बार मैली भी।
योको उस ख्याली, बहुत से बाहर की पाकीजगी का प्रतीक है, और कुमाको?
कुमाको खामियों से भरी है, पर जिंदा है, असली है।
शिमामुरा आता तो है शायद उस आदर्श की तलाश में, पर उलझता है असलियत से और आखिर में दोनों से ही मुंह मोड़ लेता है।
और इन सबके पीछे वो मोनोनो आवारे वाला एहसास, वो लगातार बहता रहता है, हर चीज के गुजर जाने का, मिट जाने का मीठा सा दर्द।
इस कहानी में हर खूबसूरत चीज को मिटना है। बर्फ पिघल जाएगी,
कुमाको का जुनून बेकार जाएगा, योको की जवानी और जान चली जाएगी।
कावाबाता इसी फानीपन में, इसी नश्वरता में एक उदास सी खूबसूरती देखते हैं, और शायद यही उदासी कहानी को इतनी गहराई देती है।
अब अगर लिखने के अंदाज की बात करें तो कावाबाता ने कहानी को शिमामुरा के नजरिए से बयान किया है।
हाँ, मतलब हम सब कुछ उसी की आंखों से देखते हैं, उसके विचारों और भावनाओं या उनकी कमी से महसूस करते हैं।
ये कमाल की तकनीक है, क्योंकि ये हमें शिमामुरा की तरह सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन साथ ही हमें उसकी ठंडक और दूरी का एहसास भी कराती है।
हम पाठक भी कहीं ना कहीं उसके साथ खड़े होकर कुमाको को देखते रह जाते हैं।
हाँ, ये पाठक को भी एक अजीब सी कश्मकश में डाल देता है, और कहानी का ढांचा भी सीधा नहीं है, जैसा हमने कहा, टुकड़ों में, यादों की तरह।
भाषा बहुत सधी हुई है, कम अल्फाजों में गहरी बात कहने वाली, जैसे जापानीज हाइकू कविता होती है।
बहुत कुछ कहा नहीं गया है, बस इशारों में छोड़ दिया गया है, खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। इस सब का पढ़ने वाले पर असर क्या होता है? जाहिर है कहानी एक गहरी उदासी छोड़ जाती है।
कुमाको के लिए हमदर्दी होती है, पर साथ में एक बेबसी भी महसूस होती है, क्योंकि हम उसे शिमामुरा की नजरों से देख रहे हैं,
जो उसे बचा नहीं सकता, या शायद बचाना ही नहीं जाता। पूरी कहानी में एक ठंडक है, बर्फ की ठंडक तो है ही, उससे ज्यादा शिमामुरा के दिल की ठंडक।
बिल्कुल। और कहानी खत्म होने के बाद भी ये सवाल मन में रह जाता है कि जीने का सही तरीका क्या है।
क्या कुमाको की तरह जुनून से जीना और जलना बेहतर है, भले ही उसमें दर्द हो,
या शिमामुरा की तरह दूर खड़े होकर सब कुछ देखना और महसूस करने से बचना बेहतर है, भले ही उसमें अकेलापन हो।
ये कहानी खूबसूरती और बेरहमी को एक साथ दिखाती है और सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं।
यकीनन, ये उपन्यास हमें जिंदगी की खूबसूरती को सराहने और उसकी उलझी हुई, अक्सर दर्दनाक सच्चाइयों से रूबरू होने के बीच के महीन धागे पर सोचने को मजबूर करता है।
ये अकेलेपन और किसी अपने की तलाश एक ऐसी कहानी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, जो दिलो दिमाग पर एक गहरा निशान छोड़ जाती है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।